ओम शांति। जो हमें होमवर्क मिला था उसमें मुरली का डेट है 3/8/75 और उसका हेडिंग है, शीर्षक है शिव शक्ति व पांडव सेना को तैयारी होने के लिए सावधानी। तो इसमें बाबा ने बताए हैं जो 7 टॉपिक निकालने के लिए बोला गया था। तो इसमें बाबा पहला क्वेश्चन करते हैं कि भविष्य का दिग्दर्शन कैसा होगा और भविष्य में आप सबको कैसे तैयार रहना चाहिए। तो इसके लिए बाबा ने बोला कि आप किस स्वरूप में स्थित हुए हो, किस स्वरूप में स्थित होते हो, क्योंकि जैसे कि लड़ाई के मैदान में जब आमने सामने होते हैं योद्धा, तो उस समय किस किस बातों पर आपकी अटेंशन होगी। जैसे कि इसमें बताया गया कि जब युद्ध के मैदान में कोई खड़े होते हैं तो उस समय अपने शस्त्र अस्त्र और अपनी शक्तियों के ऊपर संपूर्ण अटेंशन होगा, क्योंकि अभी युद्ध का मैदान में खड़े होने का समय चल रहा है। तो उस समय अगर आप सब भी संसार में हैं लेकिन संसार के जो वातावरण वायुमंडल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, अगर रूहानी योद्धा भी संसार के वातावरण के ऊपर अगर आपका उसका भी प्रभाव अगर आपके ऊपर पड़ जाए तो फिर क्या होगा। इस तरीके से बाबा ने बताए, क्योंकि आगे जाकर के सभी तरफ से समस्या सिचुएशन ऐसे बिगड़ जाएगा कि जैसे शरीर में नस खींच जाता है तो मन को ब्रेन को सबको खींचा खींचा अनुभव होता है। तो उस समय बाबा ने बोला कि 4 प्रकार के जो प्रॉब्लम आएंगे उस समय, उसमें 4 प्रकार की टेंशन बढ़ेगी। एक तो प्रकृति की छोटी छोटी आपदाएं के द्वारा होने वाला टेंशन, दूसरा है कि सरकार के जो कड़क नियम बन जाने के कारण से होने वाला टेंशन, और तीसरे में बाबा ने बोला कि जो व्यवहार में जो कमी दिखाई पड़ती है उसके द्वारा भी टेंशन होगा, और चौथे में बाबा ने बताया कि जो आज जो स्नेह और प्यार जो परिवार से मिल रहा है, समीपता की अनुभूति कर रहे हैं, आगे जाके ये समीपता की अनुभूति न होकर के ये भय में बदल जाएगा अपनापन, तो उसके द्वारा भी टेंशन बढ़ जाएगा। तो उस समय आप सबको ऐसी हालत होगी कि उस समय कुछ भी नहीं कर सकेंगे हम सब। तो उस समय बाबा ने बोला है कि ऐसी हालत होगी जैसे कमाओ तो भी मुश्किल, न कमाओ तो भी मुश्किल, इकट्ठा करे तो भी मुश्किल, न करे तो भी मुश्किल, हाँ करो तो भी खिंचातान होगा, तो ना करो तो भी खिंचातान होगा, ऐसी समस्याएं होगी उस समय। तो इसीलिए बाबा ने बोला कि अपनी स्थिति को उस समय ऐसा बनाना होगा जो कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति और समस्याओं के ऊपर आप उलझ न जाओ। तो दूसरा बाबा ने बोला था कि उस समय संबंध संपर्क वाली आत्माओं की संख्या बढ़ेगी, तो उस समय परखने की शक्ति अगर आपके पास में होगा तो आप कुछ कर पाएंगे उनके लिए भी, तो उनको आपके द्वार से कोई भी खाली हाथ न जाए। बाबा ने ऐलान किया है कि कोई भी अगर आपके द्वार से निकल जाए ऐसे खाली हाथ, तो फिर उस समय आपको परखने की शक्ति की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो उसमें बाबा ने बोला कि 3 क्वालिटी की आत्माएं होगी, 3 प्रकार की आत्माएं होगी। उसमें बाबा ने बोला एक तो होगी बाप समान बनने वाली आत्मा, दूसरी आत्मा होगी कि बाप के संबंध में रहने वाली आत्मा होगी, तीसरी आत्मा होगी सेवा और संबंध में रहने वाली। और उस समय कोई भी सारे 4 सब्जेक्ट को गैलप नहीं कर सकेंगे और किसी एक सब्जेक्ट को उनको अच्छा लगेगा, और सभी ज्ञान देन कर जाए, सभी क्लासेस कर जाए, उस समय क्लास करने का भी सिचुएशन नहीं होगा, क्लास तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसी समय होगी। तो एक ही सब्जेक्ट पर ही उनको अच्छा लगेगा, तो उनको परखने की शक्ति आपको चाहिए। तो वो किस क्वालिटी की आत्मा है, इसको कैसे मेंटेन किया जाए, इसको किस किस सेवा में बिजी किया जाए, क्योंकि सबको ये सभी चारों सब्जेक्ट का, जैसे कि आज बाबा बताते हैं, उस समय आत्मा में इतनी शक्ति ही नहीं होगी जो चारों सब्जेक्ट को गैलप कर सके। तो इसीलिए बाबा ने ये चार बातें बताई, तीन प्रकार की आत्माएं। तो उसमें तीसरी क्वेश्चन थी कि हम सब बाबा के बच्चे हैं, आगे जाकर के ब्राह्मणों को ऐसे खाली रहने नहीं चाहिए, ब्राह्मणों को एक भी सेकेंड खाली न जाए। इसके लिए बाबा ने बोला कि जो अटेंशन खिंचाओ और वातावरण और वायुमंडल को शक्तिशाली बनाओ। बाबा ने बोला कि उस समय ऐसी हालत होगी कि बाहर की सेवाएं सब मर्ज हो जाएगा, तो बाहर की सेवा नहीं कर सकेंगे। उस समय अगर हमारे पास में अभी से योग का अभ्यास होगा, योग का चस्का लगा होगा, तो आज बाबा के आगे कंप्लेन करते हैं टीचर बेनेट, टीचर भाई क्या कहते हैं कि अभी सेवा के कारण से हमें बिजी होना पड़ता है, मंथन करने पड़ते हैं, प्लांट्स बनाने पड़ते हैं, तो उस समय सब प्रकार की सेवा ठप्प हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी। उस समय सेंटर में आने वाले भाई बहनों की सेवा करना होगा। तो उस समय उन आत्माओं को वातावरण से, वायुमंडल से कैसे बचाना है, और उनको अनेक प्रकार के टॉपिक्स देने होंगे और अनेक प्रकार के नए नए क्लासेस उनको देना होगा, क्योंकि उस समय माहौल ऐसा होगा। तो इसीलिए बाबा ने बोला कि मधुबन से ऐसा प्लान जाते रहने चाहिए, और उनको महसूसता हो कि मधुबन से हम सबको कुछ शक्ति मिल रही है, कुछ पावर्स का अनुभव हो रहा है, उनको महसूस हो, इसके लिए बाबा ने बताए। तो उस समय हम जितना, जैसे कि उनको टॉपिक में ऐसे बिजी करो और ऐसे टॉपिक दो उनको, जैसे कि योगीपन की निशानी क्या होती है, वातावरण वायुमंडल में अपने को सेफ कैसे रखा जा सके, और कर्मयोगी जीवन का उसकी निशानी क्या होते हैं, ऐसे ऐसे गहरी टॉपिक पर उनको बिजी रखोगे तो वो फिर व्यर्थ से फालतू में जा नहीं सकेंगे, और वो अपने को सेफ रख सकेंगे, और उस समय वो भी साक्षी और न्यारा हो सके, इसके लिए बाबा ने बताए। तो उसमें जैसे कि पांचवा में बाबा ने बोला कि योग बल जमा करो और फिर बाहर की झंझट से अपने आप को मुक्त करो, क्योंकि उस समय योग बल जिसके पास में जमा होगा और जमा करने का टाइम होगा उस समय, तो जमा तभी कर सकेंगे जब पहले से उसकी हमारी तैयारी होगी। और बाहर में जैसे कि आज मुख की बातें जो बोल द्वारा सेवा करते हैं तो उसका एक बेहद चस्का होता है, तो इसीलिए बाबा ने बोला उस समय यह भी नहीं होगा, इसीलिए बाहर की झंझट से मुक्त हो जाओ और योग बल जमा करो। छठा में बाबा ने बोला कि स्वराज्य अधिकारी बनो। स्वराज्य अधिकारी जितना समय हम बनेंगे उतने फिर भविष्य राज्य अधिकारी बन सकेंगे। अभी यहाँ राज आसन है और ये लंबा समय बैठते बैठते ऐसी अभ्यास हो जाएगा कि हम फिर राज सिंहासन में बैठ सकेंगे। और कर्म इंद्रियां किसी भी तरीके से धोखा न दे, जैसे किसी भी प्रकार के जो परिस्थिति समस्याएं कर्म इंद्रियां धोखा देते हैं, उसमें बाबा ने दो बातें बताई, कर्म भोग और कर्म इंद्रियां किसी भी तरीके से धोखा दे न सके, उसके लिए आप स्वराज्य अधिकारी बन करके जितना समय राजा बनेंगे तब फिर आप इसका आप फेस कर सकेंगे। और स्वराज्य अधिकारी जो होगा उसको ये नहीं होगा कि है ना, राजा जो होता है उसको कभी भूलता नहीं कि मैं सिंहासन पर बैठा हूँ, और ऐसी स्थिति आप बनाओ। तो सातवां नंबर में बाबा ने बोला है कि जो परिस्थिति समस्याएं जो पेपर बन के आ रहा है तो उस समय कि आप ये नहीं समझो कि पेपर आया है, उसी पेपर्स में आपको मार्क्स जमा करना है। ऐसा नहीं कि पेपर सड़ जाए और हम जमा कर जाए, तो बाबा ने बोले चार ही सब्जेक्ट में आपको मार्क्स जमा करना है, अलग अलग जैसे योग से ही जमा करना ऐसी बातें नहीं होगी, चारों सब्जेक्ट में आपको मार्क्स जमा करना होगा, क्योंकि उस समय प्रॉब्लम इतना जो भयानक होगा, तो उस समय उस चारों सब्जेक्ट की बातें आएगी परिस्थिति पेपर, तो उस समय हमको चारों सब्जेक्ट में पास होना होगा। इसीलिए बाबा ने परिस्थिति समस्या के लिए माना, बाबा ने भविष्य का क्या दिग्दर्शन है उसका संपूर्ण रूप से बताए हैं। तो ऐसे तो लंबी मुरली है लेकिन समय के अभाव में इतने में ओम शांति।
ओम शांति। 27 दिसंबर 1974 की मुरली। पवित्र भव जोगी भव द्वारा सर्व वरदानों की प्राप्ति। इस मुरली में बाप दादा उस सभा को देख रहे थे कि जो पहली पॉइंट है इसमें, 7 पॉइंट निकाली इसमें। पहली पॉइंट है वरदानी मूरत सभा। तो बाप दादा उस समय वरदानों से सजी हुई सर्व आत्माओं को देख रहे थे। बाबा ने देखा कि सर्व वरदानों से सुशोभित आत्माएं सभा में बैठी हुई हैं। तो बाबा ने कहा कि सर्व वरदानों में से दो मुख्य और विशेष वरदान वो कौन से? योगी भव और पवित्र भव। और इन्हीं दोनों वरदानों में ही सर्व वरदान समाये हुए हैं। तो बाबा देख रहे हैं कि बच्चे, और पूछ भी रहे हैं, बाबा प्रश्न भी कर रहे हैं कि बच्चे कि ये जो दो वरदान बाबा विशेष आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, हर बच्चे में बाबा ये दो गुण देखना चाहते हैं, क्योंकि पवित्रता के बिना और योगी के बिना ये ब्राह्मण जीवन कुछ नहीं। और सेकंड पॉइंट, वरदानों का कोरस। कोर्स। तो बाबा ने कहा कि जैसे कोर्स माना फोर्स, कि किसी चीज में स्पेशलिस्ट होना। कोर्स माना उसके बारे में कंप्लीट स्टडी करना। तो बाबा जो दूसरी पॉइंट है वरदानों का कोर्स, आप उनकी डीप स्टडी करो। और कोर्स करने के बाद तीसरी पॉइंट, अनुभव नहीं तो कुछ नहीं। जैसे हम लौकिक में भी कोई स्टडी करते हैं, कोर्स करने के बाद हमारी इंटर्नशिप होती है जिसमें हमें प्रैक्टिकल पता चलता है। तो तीसरी पॉइंट में बाबा ने बोला कि अपने इन वरदानों को अनुभव भी करो, उसके अनुभव मूर्त बनो। और चौथी पॉइंट, फर्स्ट क्लास की एंट्री। हमारी फर्स्ट क्लास की एंट्री कैसे होती है? हमारे कोर्स और अनुभव के आधार से। बाबा ने कहा कि फर्स्ट क्लास की एंट्री आपकी तभी होगी जब आप अपनी स्टडी को कंप्लीट किया होगी। फर्स्ट क्लास में आने के लिए आपको उसका प्रत्यक्ष रिजल्ट भी देना होगा बाबा को। बाबा ने कहा कि यदि आप योगी स्थिति और पवित्रता की स्थिति में बहुत ऊंचे उठ जाओगे, तभी आपको ड्रामा और बाबा फर्स्ट क्लास में बैठने देंगे। फर्स्ट क्लास माना सतयुग के आधी में आने की शुरुआत। और नेक्स्ट पॉइंट, न्यारा और प्यारा। बाबा ने कहा कि ये आपकी स्थिति ऐसे हो कि आपको अपवित्रता की अविद्या हो जाए, विस्मृति हो जाए, कि आपको यदि आपके जीवन में ऐसी कुछ स्थिति आती है, जब कोई बात आपके सामने आती है तो सोचो ये मेरे शूद्रपन के या पहले के जो संस्कार हैं, ये मेरे अभी के नहीं हैं, ये मेरे ब्राह्मण के, ब्राह्मणपन के संस्कार नहीं हैं। तो ऐसे में आप न्यारा और प्यारा बन जाओगे। और नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट, शक्तिशाली कौन, बंधने वाला या बांधने वाला? बाबा ने कहा कि आप जब प्रैक्टिकल में अपनी स्थिति को कायम रखोगे तो शिव बाबा भी आप पर बलिहार जाएगा। कि बाबा ने कहा जो इस ड्रामा में मेरा पार्ट है, आप सभी को आकर के पढ़ाना और पढ़ा करके आपको नूरे रतन बनाना। तो ये जो आप पूरी श्रीमत पर प्रैक्टिकल में ये करोगे तो बाबा भी आपके प्यार में बंध जाएगा। तो फिर बाबा ने ये पूछा कि इसमें से शक्तिशाली कौन? आप बच्चे, क्योंकि आपके प्यार की वजह से ही बंधा हुआ मैं आपकी हर बात मानता हूं। और जैसे हमारा ये बाबा ने वरदानों का कोर्स करवाया, उसके बाद अनुभव करवाया, फिर फर्स्ट क्लास में एंट्री, और जैसे बाबा की ये हम सभी श्रीमत पर खरा उतरते हैं तो लास्ट में जो सेवन पॉइंट बाबा बोलते हैं, वाह बच्चे, शाबाश बच्चे। क्योंकि सर्व वरदानों में से बाबा ने जैसे मुरली में हमें वरदान देते हैं, सफलता मूर्त भव, स्वराज्य अधिकारी भव, साक्षात्कार मूर्त भव, स्वराज्य अधिकारी भव, विजय निर्भय भव, तो इन सर्व वरदानों में ये दो वरदान मुख्य थे, योगी भव और पवित्र भव। और इन्हीं दोनों वरदानों की आपको स्मृति रहे तो इसी में ही सर्व वरदान समाये हुए हैं। तो ये सात पॉइंट निकाली थी इस मुरली में, ये मुरली 27/12/1974 की है। तो इस मुरली में बाबा ने पूरा बच्चों को वरदानों से सजाया और वरदानों की स्मृति दिलाई और दो विशेष वरदान भी बताए। और तो पूरा बाबा ने एक बच्चों को ये एक पैकेज दिया, सात पॉइंट। हाँ, रिवाइज। पहली पॉइंट वरदानी मूर्त सभा, और सेकंड पॉइंट वरदानों का कोर्स, थर्ड पॉइंट अनुभव नहीं तो कुछ नहीं, फोर्थ पॉइंट फर्स्ट क्लास की एंट्री, एंड फिफ्थ पॉइंट न्यारा और प्यारा, सिक्स्थ पॉइंट शक्तिशाली कौन, बंधने वाला या बांधने वाला, और सेवंथ पॉइंट वाह बच्चे, शाबाश बच्चे। तो एक और मैं आप पॉइंट समझ लो जैसे भी, कि जब भाई जी ने मुरली दी तो मुरली में स्टडी कर रहा था तो एक पॉइंट मेरे मन में आ गई, मुरली की डेट। तो मुरली की डेट जो थी 27/12/1974, मैंने इस पर भी विचार किया। तो लेकिन जब मुझे जे डेट थी मिली वो कल की थी 26 की, तो मैंने वो पॉइंट कैंसिल कर दिया। तो चलो जैसे ड्रामा की युक्ति, तो घूम घुमा के डेट फिर क्या मिल गई, 27/12। और इस मुरली में भी बाबा वरदान दे रहे हैं किनको, हम सताई हुई आत्माओं को, 27/12 सताई हुई आत्माओं को वरदान देने के लिए 1974 एक शिव पिता परमात्मा हम बच्चों को नोधा भक्ति से छुड़ाने के लिए स्वदर्शन चक्कर फिराते हुए चार धाम की यात्रा करो तो माया आ नहीं सकती, 27/12/1974 एक शिव पिता परमात्मा नोधा भक्ति से छुड़ाने के लिए। क्योंकि भक्ति मार्ग में हमने नौ तरीके की भक्ति की, क्योंकि जब मैं भी इस ज्ञान में आया तो मैंने भी भक्ति को काफी ट्रायल किया। तो ऐसे में मेरे को एक भाई ने बोला, एक सन्यासी ने बोला कि आप नोधा भक्ति में पूर्ण हो जाओगे तो आपको फिर ज्ञान मिल जाएगा, और इसके लिए आपको जो गुरु मिलेगा वो बहुत ऊंच और महान होगा। तो ये मेरे शुरू में था, भक्ति मार्ग में ही था कि मैं किसी भी देहधारी को अपना भगवान नहीं बनाना चाहता था। तो मैंने उस वक्त तो मैंने वाणी को आदि गुरु ग्रंथ साहब को ही अपना गुरु माना और उसमें से मैंने टॉपिक निकाल निकाल के अपना जीवन बनाया कि उसमें जो ये बातें आती थी कि राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई, तो उसमें ये था कि एक ऐसा समय आने वाला जिसमें सिर्फ खालस राज करेंगे, पवित्र लोग राज करेंगे। तो मुझे भी था कि ऐसा युग कब आएगा, और तो इसीलिए फिर हमने भी स्टडी करी। तो ऐसे ही मेरा लिंक एक बहन से हुआ, तो आज बाबा ने नौधा भक्ति से छुड़ा दिया। और माया से परेशान थे, तो माया से परेशान होने के लिए आज से चार दिन पहले जो सचिन भाई ने मुरली थी उसमें एक टॉपिक में भाई जी बोल रहे थे कि माया की अथॉरिटी में कि माया कहाँ नहीं आ सकती। चार धाम के बारे में बाबा ने भाई जी ने ऐसे बताया कि आप चार धाम की बार बार यात्रा करो तो माया कभी नहीं आ सकती। ओम शांति।
ओम शांति। मुझे टॉपिक जो मिला था वो 29 जून 1970 का था, विशाल बुद्धि कैसे बने, विशाल समर्पण, समर्पण का स्वरूप जब बनेंगे। तो आज बाप दादा ने पहले तो ये पूछा बच्चों से, हम बच्चों से, कि हम चार मूर्त बन गए हैं क्या। बाबा ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम सब में बाबा ने हमको चार मूर्त, एक एक बच्चे में चार मूर्त देखी बाबा ने। तो बाबा ये पूछ रहे हैं कि क्या आप सभी चार मूर्त बन गए हैं क्या, तो और वो कौन सी मूर्त है। तो पहले तो बाबा ने फर्स्ट तो ये बताई मुरली में, जो बाबा ने बताया, एक तो हमें ज्ञान मूर्त, फिर दूसरा गुण मूर्त, और तीसरा दान मूर्त, और चौथा संपूर्ण सफलता मूर्त। तो बाबा हम सब से ये पूछ रहे हैं, क्या आप सब एक एक बच्चे वो बन गए हैं जो बाबा हमें देख रहे हैं। और बाबा ने फिर ये भी कहा कि कितना, जितना ज्यादा, सेकंड मतलब सेकंड पॉइंट थी कि बाबा ने कहा कि जितना जितना हमारी प्रैक्टिस होगी, जितनी जितनी हमारी अभ्यास होगा, उतना ही हम सफलता मूर्त बनेंगे। लेकिन सफलता मूर्त बनने के लिए भी, मतलब जो लास्ट बाबा ने टॉपिक था, मतलब कि जो लास्ट आए हैं तो वो फास्ट कैसे जाएंगे, तो वो फास्ट वैसे जब हम प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो ही हम मतलब फास्ट जा पाएंगे। तो जितनी ज्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी उसी के ऊपर हमारी सफलता डिपेंड करेगी। और तीसरा बाबा ने कहा कि ये जब चीजें हैं तो क्या मैंने उतनी विशालता से अपने आप को, मतलब उतना विशालता की धारणा करिए। सबसे पहले तो जैसे अगर मैं संपूर्ण बनना चाहती हूँ तो संपूर्णता में भी जैसे समर्पण, जितना ज्यादा मेरा संपूर्णता जितनी मेरे अंदर आती जाएगी, वैसे वैसे मेरे अंदर भी समर्पणता भी, जितनी ज्यादा मेरे अंदर समर्पणता होगी उतना ही मैं आगे कर्मातीत स्थिति। लेकिन वो कर्मातीत स्थिति हमारी, बाबा पूछ रहे हैं कि क्या हमारे अंदर क्या है हमारा एक लक्ष्य, ये चौथी पॉइंट थी। तो बाबा ने उसमें विचार करने के लिए कहा कि क्या हमारा लक्ष्य है और हम लक्ष्य को कैसे धारण करेंगे। तो लक्ष्य में भी जब मैं उस विशालता को धारण कर रही हूं क्या, अगर मैं या हम बच्चे अगर उस विशालता को उतना ही धारण कर रहे हैं तो इट मींस कि मैं सही पाथ पर हूं। और फोर्थ पॉइंट थी बाबा ने बताया कि फिर इसमें भी एक तो है कि जैसे ना फिर हम विशाल बुद्धि बनते हैं, और इसके अंदर भी अगर मेरे एक एक चीज, जैसे बाबा ने कहा है हम आत्मा जो मेरे खुद के दिव्य गुण हैं, जैसे तो एक तो मेरे को समर्पण करना, तो एक संकल्पों का समर्पण, फिर दूसरा हर सेकंड और समय का समर्पण, फिर तीसरा है कर्म का भी समर्पण, फिर चौथा है संपत्ति और संबंधों का भी समर्पण। और फिर इतना ही नहीं, अगर महादानी बने तो उसके साथ साथ भी, ये भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसके साथ साथ मेरे को लौकिक के साथ साथ ईश्वरीय गुणों का भी अन्य आत्माओं को बनाने में दान करना, तो उसको कहेंगे एक चीज। और बाबा ने बोला कि इसको कहेंगे विशाल बुद्धि, तो हम विशाल धारणा में रहेंगे तो इसको बोलेंगे विशाल बुद्धि। और फिर बाबा ने कहा कि अभी भी आप त्रिनेत्री बने कि नहीं, आप अभी त्रिनेत्री हैं या युद्ध स्थल में हैं, मतलब कि क्या अभी भी, बाबा ने एक उदाहरण दिया था मुरली में कि जैसे आंख में कोई कचरा घुस जाता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो हम पलक झपकाते रहते हैं, स्थिर नहीं होते हैं। तो बाबा ने कहा कि क्या माया आती है या जब परिस्थिति ऐसी आती है तो क्या हम बच्चे उस समय क्या करते हैं, एक तक स्थिति हमारी रहती कि नहीं रहती। तो अगर मेरी एक तक स्थिति रहती तो मतलब अभी सही चल रही है एक तो, और दूसरा शांति। तो बाबा ने कहा जो शांति मैं चाहती हूँ, मतलब मैं अपने बच्चों को घर में या कहीं पर भी लौकिक दुनिया में जैसे शांति का दान, अगर वो शांति देकर के ही मुझे शांति मिलेगी, ऐसा नहीं कि मेरे को अलग से मैं चाहूं नहीं मेरे को मैं सेटिस्फाइड हूं, नहीं। बाबा ने कहा बाबा समान बनना, मतलब कि जो बाबा ने किया बाबा ने सिर्फ देना देना और देना, तो वो ही मेरे को करना है। फर्स्ट तो यही था कि बाबा ने देखा चार मूर्त थी, चार मूर्त में भी चार बाबा ने बताए, जो एक तो फिर उसके बाद प्रैक्टिस करनी है और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही हम बनेंगे। फिर थर्ड है बाबा ने बताया कि विशाल बुद्धि बनना है, और फोर्थ है एक सेकेंड त्रिनेत्री और महादानी, और हाँ फिफ्थ महादानी, और सिक्स्थ है देना, जितना देंगे उतना बनेंगे, और साक्षात्कार करवाना है अन्य बच्चों को, मतलब हम जितना देंगे। हाँ एक रस स्थिति में रहेंगे। तो ओम शांति।
ओम शांति। 11 अप्रैल 1973 की मुरली है, शीर्षक है परिवर्तन। तो इसमें सात पॉइंट निकालने कहा गया था, उसमें से पहला पॉइंट है चढ़ती कला का परिवर्तन। बाबा ने इसमें हम बच्चों को जो कि निमित्त और अनुभवी आत्माएं हैं उनको ये चेक करने के लिए कहा है कि हर समय मनसा वाचा कर्मना तीनों ही रूपों में परिवर्तन होता है कि नहीं। साथ में बाबा ने यह भी कहा कि द्वापर में भी परिवर्तन होता है, परंतु वो गिरती कला का परिवर्तन होता है, केवल संगम युग में ही चढ़ती कला का परिवर्तन हो सकता है। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है परिवर्तन की स्पीड। बाबा ने कहा कि परिवर्तन की तो भिन्न भिन्न प्रकार की स्पीड होती है, जैसे एक सप्ताह में, एक दिन में, एक घंटे में, या फिर एक सेकेंड में। तो बाबा ने कहा है बच्चे चेक करो कि आपकी परिवर्तन की स्पीड कितनी है। साथ ही बाबा ने यह भी कहा कि जो निमित्त महावीर आत्माएं हैं उनको अगर किसी भी परिवर्तन को लाने में समय लगता है तो आपको फाइनल परिवर्तन लाने में भी उतना ही समय लगेगा। तीसरी पॉइंट है महावीर माना समय की घड़ी। बाबा ने इस मुरली में महावीर आत्माओं की तुलना स्थूल घड़ी से की है। जैसे कि हम स्थूल घड़ी को देखने से समय का स्पष्ट पता चलता है, उसी प्रकार महावीर आत्माओं को देखने से दूसरी आत्माओं को ये पता चलेगा कि समय नजदीक है या दूर। साथ ही उनके साक्षीपन की स्थिति को देखने से समय के परिवर्तन होने की गति का भी पता चलेगा। चौथी पॉइंट जो निकाली है वो है फाइनल संपूर्ण परिवर्तन। बाबा ने इसमें कहा है कि बच्चे आपके जो मूल संस्कार है, यहां पे मूल संस्कार मतलब हमारी कमजोरियों की बात बाबा ने की है, तो कहा है कमजोरी रूपी मूल संस्कारों को जब तक आप पूरा परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक उसे फाइनल संपूर्ण परिवर्तन नहीं कहा जाएगा। यहां तक कि अगर उसमें कोई परसेंटेज या अंश मात्र भी रह जाता है तो उसे भी संपूर्ण परिवर्तन नहीं कहेंगे। पांचवा पॉइंट जो निकाला है वो है उदाहरण मूरत बनना। बाबा ने कहा कि मम्मा बाबा ने तो श्रेष्ठ कर्म करने के निमित्त बन के दिखाया ही है, मगर बाबा ने एक सवाल पूछा कि उनके बाद अब साकार में बच्चे किन्हें फॉलो करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा है कि आप अनुभवी निमित्त महावीर आत्माओं को ऐसा परिवर्तन करके दिखाना है कि बाकी आत्माएं आपको फॉलो कर सके। छठी पॉइंट जो निकाली है वो है प्रैक्टिकल लाइफ से प्रूफ। बाबा ने कहा है कि अब प्रत्यक्षता का समय है, ऐसे में परमात्म ज्ञान का प्रूफ आपका प्रैक्टिकल लाइफ है। इसलिए अब सिर्फ भाषण करने से नहीं होगा, बल्कि अब प्रैक्टिकल में ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त और धारणा मूर्त बन के आपको दिखाना है। आखिरी जो पॉइंट निकाली है वो है प्रोग्राम और प्रोग्रेस का बैलेंस। बाबा ने इसमें कहा कि जैसे जैसे आप सेवा के प्रोग्राम बनाते रहते हैं, वैसे ही पुरुषार्थ के प्रोग्रेस की भी प्लानिंग करनी है। ऐसे प्रोग्राम बनाने हैं जहां पे पुरुषार्थी आपस में अपने अनुभवों का लेन देन कर सके, अर्थात हमें सेवा के प्रोग्राम और पुरुषार्थ के प्रोग्रेस का बैलेंस रखना है। तो ये थे 7 पॉइंट, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट था चढ़ती कला का परिवर्तन, दूसरा था परिवर्तन की स्पीड, तीसरा था महावीर माना समय की घड़ी, चौथा था फाइनल संपूर्ण परिवर्तन, पांचवा था उदाहरण मूर्त बनना, 6 नंबर पॉइंट थी प्रैक्टिकल लाइफ का प्रूफ, और 7 नंबर पॉइंट था प्रोग्राम और प्रोग्रेस का बैलेंस। ओम शांति।
ओम शांति। दोष ही माया नहीं है। हेडिंग 2583 मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है, दिन था। मैं फर्स्ट विजयवाड़ा में अपना प्रदर्शनी देखी थी। इस मुरली में बाबा ने ज्ञानी और योगी आत्माओं का जो रचना के बारे में देखते हुए बताया था, और कुमारियों के बारे में बताया, और अदर कुमार्स के बारे में बताया था। आज बाप दादा ज्ञानी तो योगी तो आत्माओं को देख रहे, ज्ञानी तो योगी तो आत्मा माना अर्थात मास्टर रचता के सहज आसन पर स्थित हुई शक्तिशाली आत्मा के आगे सारी रचना दासी के रूप में और सेवा में सहयोगी बन जाती है। मास्टर रचता सेकंड में अपना शुद्ध संकल्प रूपी आर्डर से जो वायुमंडल बनाना चाहे वह बना सकते हैं, जैसे वाइब्रेशन फैलाना चाहे वैसा फैला सकते हैं। जिस शक्ति को आह्वान करे वह शक्ति सहयोगी बन जाती है, और सर्व प्राप्तियों का मास्टर दातापन अप्राप्त आत्माओं को भी प्राप्ति दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट, शक्तिशाली मास्टर रचता कहलाने वाले अपनी रचना संकल्प शक्ति के एक व्यर्थ संकल्प से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, स्मृति का प्रेशर लो हो जाती है, दिल शिकस्त का पसीना निकल आते हैं, क्या करे कैसे करे इसमें परेशान हो जाते हैं, स्वयं नीचे आ जाता है, पोजीशन की सीट को छोड़ देते हैं, तो खाली स्थान को माया अपना बना के कहती है दोषी मैं नहीं हूँ, आह्वान करते हैं तो मैं पहुंच जाती हूँ। और कुमारियों के लिए बाबा ने कहा, कुमारी स्वतंत्र पंछी है, कुमारी है बाप की तख्त नशीन ताज और तिलकधारी, लक्ष्य पक्का है, कोई भी हिला नहीं सकते। कुमारी बनना है तो श्रेष्ठ ही बनना है, कुमारी सदा यही दृढ़ संकल्प करना है। और अदर कुमार्स के लिए बाबा ने कहा, गृहस्थी जीवन में ट्रस्टी बन के रहना है, मेहनत खत्म हो जाती है, भक्ति का फल स्वयं ज्ञान दाता मिल गया, जीवन बंद से जीवन मुक्त आत्माएं हो गए, तो सदा हल्के होकर उड़ना है और उड़ाना है, खुशी में नाचना है, सदा नए जीवन नए संस्कार श्रेष्ठ जीवन की संस्कार है ही, स्व कल्याणकारी विश्व कल्याणकारी रहना है, मैं रूहानी गुलाब हूँ इस स्वमान में रहना है, यज्ञ सेवाधारी हूँ
विजयी पांडव समझ के चलना है और पांडवों के लिए बाप सदा साथी है और मधुबन आके रिफ्रेश होके जाना ही है। आज बाप दादा ज्ञानित्व योगित्व आत्माओं को देख रहे और मास्टर रचिता सहज आसन पे स्थित हुई शक्तिशाली आत्मा के आगे सारी रचना दासी दासी के रूप में सेवा में सहयोगी बन जाती है। शक्तिशाली रचना कहलाते हैं कई आत्माएं, लेकिन माया से परेशान हो जाती है और माया अपना सीट ले लेती है और कुमारियों के लिए सदा तख्त नशीन ताज और तिलकधारी और लक्ष्य पक्का रखना है, कभी हिलना नहीं है। कुमारी माना दृढ़ संकल्प करना है, श्रेष्ठ जीवन बनाना है और अदर कुमार्स के लिए भक्ति का फल स्वयं ज्ञान दाता मिल गया, जीवन बंद से जीवन मुक्त में आ गया, नए जीवन नए संस्कार नए श्रेष्ठ संस्कार हो गया और स्व कल्याण विश्व कल्याण करना है। मास्टर गुलाब हो इसी स्वमान में रहना है, रूहानी गुलाब हो, यज्ञ सेवाधारी और विजयी पांडव समझकर चलना है, सदा बाप के साथ ही रहना है और बार बार मधुबन आके रिफ्रेश होके जाना है। स्थिति का प्रेशर लो हो जाते हैं तो दिल शिकस्त का पसीना निकल आते हैं, क्या करे कैसे करे इसमें परेशान हो जाते हैं, स्वयं नीचे आ जाता है और पोजीशन की सीट को छोड़ देते हैं तो खाली स्थान को माया अपना बना देती है और दोषी मैं नहीं हूँ, आह्वान करते हैं तो मैं पहुंच जाती हूँ ऐसा बताती है माया। ओम शांति।